कर्मकांड शिविर लेक्चर नंबर 13 पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद जी का कर्मकांड की रचना की। भाषा टीका ने ढूंढारी भाषा में उस जमाने में बहुत विरोध हुआ था उनको, यानी हर जमाने में विरोध करने वाले लोग होते ही होते हैं। उनका कहना था कि ये ग्रंथ जो होते हैं वो संस्कृत और प्राकृत में शोभा देते हैं। आप उसको ढूंढारी भाषा में लिखकर उसके डिवेल्युएशन कर रहे हैं ना, उसकी कीमत कम कर रहे हैं। तो ग्रंथों का तो क्या है, ग्रंथ किस लिए रचे जाते हैं, सब लोग समझे इसलिए। अगर संस्कृत प्राकृत उस जमाने में, अभी टोडरमल जी के जमाने में भी संस्कृत का ज्ञान था लोगों को, आज तो वो भी जागरूकत सा हो गया है, तो कहते उस जमाने भी उनको विरोध हुआ था। परंतु यहाँ तो उनकी तो यही भावना थी कि जनसाधारण इस विषय को समझे। देखो है तो कठिन विषय, परंतु उसमें भी ये भेद विज्ञान के लिए अत्यंत कार्यकारी ऐसा विषय है, इसलिए उन्होंने इसको सरल करके लिख दिया था। उसी का जो हिंदी अनुवाद हम यहाँ पढ़ रहे हैं, और ये बंध उदय और सत्व अधिकार में, बंध में तो हमने प्रकृति बंध की बात देखी, प्रकृतियों के नाम भी देखे, कहाँ कौन सी प्रकृतियाँ बनती है और बंध की विच्युति कहाँ कहाँ होती उसकी बात देखी। भूल गए ना? हाँ नहीं, अच्छा है। पहले गुणस्थान में कितने प्रकृतियों की बंधे विच्छित्ति होती है, कौन बताएगा? 16 के नाम पुरुषों में कोई बताना चाहते हैं? आप बताएंगे? हाँ बोलो बैठो।
केंद्रीय स्थावर आता, सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण, द्विंद्रिय तीन इंद्रिय चतुरिंद्रिय,
नरक गति
अनुपूर्वी,
ये 16 प्रकृतियां पहले गुणस्थान में बनती है। जो ऊपर के किसी भी गुणस्थान में नहीं बनती है तो उसको कहेंगे ये पहले गुणस्थान में 16 प्रकृतियों की बंध विच्छेद होती है। दूसरे गुणस्थान में कितनी रेखें थी? 25। यहाँ से कोई बताना चाहते हैं? विजय जी हाँ बोलो बोलो। हाँ अनंत अनुबंधी, चार तीन निद्रा, चार संस्थान बीच वाले, हाँ चार बीच वाले सहन, हाँ हाँ दुर्भोग दूसरा नादे और उद्योग, ये तीन संबंधी चार। हाँ अब तीन रह गई, और प्रशस्त विहार गति और निज गोति है। ये अच्छे अभ्यास हुए, धवला भी सुनते हो, पैथोलॉजी लैब है, लैब में एक रूम बना लिए, वहां स्वाध्याय चलता है ना। जिसको स्वाध्याय करना है उसको कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो यहाँ हम देखते हैं, ये तो दूसरे गुणस्थान में हमने 25 देखे। प्रतीति आप बताएंगे तीसरे गुणस्थान में कितने बंधे विच्छित्ति होती है? 0 0। चौथे गुणस्थान में 10। कौन गिनाना चाहता है अभी चेयर वालों के लिए? हाँ दस प्रकृतियों के नाम गिनाना है। कौन बताना? लक्ष्मी बोलो। हाँ, अनंतानुबंधी चार, क्या अप्रत्याख्यान चार, अप्रत्याख्यान चार। हाँ हाँ, मनुष्य यानी अप्रत्याख्यान की चार। फिर मनुष्य गति संबंधी छह बताने, यानी गति गत्यानुपुरी, यानी मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपुरी, उसके साथ नेचुरली औदारिक शरीर और अंगोपांग बनता है। और फिर वज्रषभ नारद संयम बांधेगा, समय दृष्टि है ना, वही पहला ही संयम बांधेगा। और फिर मनुष्य, ये दस प्रकृतियों की विच्छित्ति चौथे गुण स्थान में होती है। पांचवे की बताएंगे अश्विन, पांचवे गुण स्थान की बंदे। हाँ बोलो नवीन भाई, बोलो कौन से चार? प्रत्येक है नव चार, क्रोध मान मान। छठे गुण स्थान में अशोक जी आप बताओ, आपका एक नाम ले लो उसमें बीच में। नहीं कोई बात नहीं, नीलम जी आप बताएंगे। यानी उन्होंने क्या बताया, अस्थिर अशुभ असाता वेद्य अयशस कीर्ति रति और शोक, छठे तक बनती है, ऊपर कहीं नहीं बनती है। मुनिराज तो छठे सातवें में घुमा करते हैं, उनके गुणस्थान बदलते रहते हैं, सातवें में इनका बंधन नहीं है, छठे में आने पर बंध होता है। छठे में अरति का भी हो सकता है या रति का भी हो सकता है, ऑप्शन है, प्रतिपक्षी है वहाँ। तो शास्त्र में ऐसा आता है, वो हजारों बार उसका हस्तरति और अर्तिशोक का वो बंधन करते रहते हैं, सब ऐसा उसका कथन है। उसका अर्थ होता है छठे सातवें में हजारों बार गमनागमन होता है, वो श्रेणी की बात जब उठती है द्वितीयोपशम करने के बाद, तब ऐसा उसमें वर्णन आता है। ये छठे की देखी, सातवें गुणस्थान के कौन बताना चाहता है? एक एक बोलो बोलो। हाँ देवायु। आठवें गुणस्थान हमें सब नीच देखते हैं। आप ट्राई करना चाहते हैं? हाँ बोलो।
आठवें गुणस्थान के पहले भाग में निद्रा प्रचला।
हाँ पहले भाग में निद्रा प्रचला, छठवें भाग में।
हाँ
अच्छा,
सुवद सुस्वद त्रस बाद पर्याप्त प्रत्येक ये चार, स्पर्श रस गंध वर्ण तेजस सर तेजस तेजस कर्म आरक आरक अंगोपांग आरक शरीर आरक अंगोपांग देवगति देवगति अनुपूर्वी वैक्रिय शरीर वैक्रिय अंगोपांग उपगात परगात पंचेंद्रिय की एक जाति संस्थान संस्थान की एक समचतुर संस्थान एक आदि और प्रशस्त विहार हो जाती। कितनी जाती है?
एक रह गया।
सातवें भाग की तो चार अलग है, ये तीस का ग्रुप है।
देखो याद करने के लिए आसान कैसे है, क्योंकि हमें गति जाति वगैरह याद करने की आदत है ना, तो यहाँ तक देवगति बन रही है। तो देवगति देवगत्यानुपूर्वी उसके साथ अब पंचेंद्रिय जाति बनेगी उसके साथ, यानी गति जाति इस तरह से ना, तो जाति कौन सी बनेगी? पंचेंद्रिय जाति। अब देवगति के साथ कौन सा शरीर बनेगा? वैक्रिक वैक्रिक अंग का तेजस कारमान तो ध्रुव है, उसको भी वहीं पर बता देना तेजस कारमान। अब उसमें देवगति बांध रहा है तो कोई सहनन तो नहीं बन रहा है, संस्थान बनेगा कौन सा बनेगा? समय चंद्र का संस्थान। और उसके बाद वो तो अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास वो सब आ जाएंगे, उसके बाद वर्ण रस गंध स्पर्श वो भी आ जाएगा, उसके बाद वो सिरा भी सब रहने त्रस बाधा पर्याप्त होते, त्रस बाधा पर्याप्त होते, उसके बाद स्थिर शुभ सुस्वर आदे यशस कीर्तन नहीं है, प्रशस्त विहार प्रशस्त विहार गति लेना है। और यहाँ निर्माण रही है, निर्माण और तीर्थम का और आहार कारण इस तरह से यहाँ तीस प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है। देखो यहाँ ले दे ना पुस्तक में देख, या उन्होंने आपने ये इसी अर्थ से याद किया तीर्थंकर निर्माण प्रशस्य। अब जाति तो कौन सी है, पंचेंद्रिय जाति है, तेजस कारमान शरीर आहार कारण कंगोपां समचतुर संस्थान देवगति देवगत्यानुपूर्वी वैक्रेक वैक्रेक अंगोपां वर्णगंध रस स्पर्श अग्र लघु उपघात प्रघात उच्छ्वास त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक स्थिर शुभ शुभ सुस्वर आदि। ये छह में से यशस कीर्ति को छोड़ देना क्योंकि वो बनती रहेगी आगे। इस तरह से ये जो 30 प्रकृतियां है उसकी यहाँ विच्छित्ति होती है। अंतिम भाग में आठवें के हास्य रति उभय ये हो गई आठवें की बात। नवे गुणस्थान में कितने बंदे हुए, 5 बताऊंगे आप। पुरुष वेद संज्वलन क्रोध मान माया लोभ ये 5 की विच्छित्ति होती है। दसवें गुणस्थान में कौन बताना चाहता है, हाँ बताओ। हाँ ये क्या हो गए, वहाँ बंधन की विच्छित्ति यहाँ हो जाएगी। उसके बाद दसवें के बाद ग्यारहवें में कोई बंधन है वहाँ पर, सातवें का बंधन है विच्छित्ति नहीं है। बारहवें में से तेरहवें में हाँ एक बनता था वो इसके आगे नहीं बंधे गए अयोगी को, क्योंकि योगी निकल गया तो कुछ अभी बंध का कारण ही नहीं बचा। तो ये क्यों बंध के कारण क्या है, तो हमने देखा था मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग ये बंध के कारण है। जहाँ जो बंध के कारण मौजूद है वहाँ वैसी वैसी प्रकृतियाँ बंधेंगी। तो जहाँ मिथ्यात्व निकल गया तो मिथ्यात्व संबंधी बंधने वाली वो प्रकृतियाँ भी नहीं बंधी। इस तरह से ये सब हमने देख लिया था विस्तार से, ये प्रकृति बंध में देखा। अभी हमको स्थिति बंध की बात देखनी है। स्थिति बंध की बात हमने शुरू की कि उत्कृष्ट स्थिति बंध किसके यानी कितना होता है उसकी बात हमने देखी। यहाँ जो कुछ पारिभाषिक शब्द आते हैं बार बार उसके लिए एक चार्ट लगाया है। आपके पास जीरोक है, जीरोक उसमें ये चार्ट नहीं है, ये पहले के शिविरों वाला एक चार्ट है। तो ये समय प्रबद्ध हमने नाम सुना है ना, समय प्रबद्ध उसका अर्थ क्या है, एक समय में बंधने वाले जो परमाणुओं की संख्या है उसको समय प्रबद्ध कहते हैं। पर विशेष रूप से बद्ध यानी बंद होते पर एक समय प्रबद्ध एक ये इसका यूनिट बता रहे हैं, क्योंकि खिरने वाले भी परमाणु कितने होते हैं तो कहेंगे एक समय प्रबद्ध। आप कहेंगे ये बंधने वाले तो नहीं है तो समय प्रबद्ध क्यों कह रहे हैं, पर तो उसका हमने यूनिट बनाया कितने बनते हैं तो कहते कि एक समय में अनंत कारमाण वर्गणा कर्मरूप होती है उसी को हम बनती है कह रहे हैं। तो कितनी अनंत है तो अभोजन से अनंत गुणी और सिद्ध राशि के अनंत वे भाग, ये जो पर्टिकुलर अनंत है इतनी कारमाण वर्गणा जीव एक समय में ग्रहण करता है या वो कर्मरूप होती है। और एक एक वर्गणा में परमाणु कितने हैं वे भी इतने अनंत है, यानी वर्गणा अनंत और एक एक वर्गणा में परमाणु अनंत, यानी इतने ही अनंतानंत परमाणु जीव एक समय में ग्रहण करता है। इसको कहेंगे एक समय प्रबद्ध। एक समय प्रबद्ध एक तो सामान्य उसकी शब्द हुआ, तो उसका जो प्रमाण है अनंत होगा वो भी हीनाधिक होता है। क्यों, योग हीनाधिक होगा तो जो नंबर ऑफ परमाणु जो ग्रहण करते हैं वो भी हीनाधिक होता है। जिसको हम प्रदेश बंधन में उसकी अधिक चर्चा करेंगे। प्रदेश बंधन में परमाणु जितने ग्रहण करते हैं उस संख्या को यहाँ प्रदेश बंध कहते हैं। वो संख्या कितनी है तो उसका यूनिट हमने बनाया समय प्रबद्ध। वो तो प्रदेश बंध में उसकी विशेष फिर दोबारा इसकी चर्चा होगी। तो एक समय में बंधने वाले परमाणुओं की संख्या को कहेंगे समय प्रबद्ध। और एक समय प्रबद्ध में क्या क्या होता है तो वो फिर बताएंगे ना, उसमें आबादा छोड़कर निषेक रचना होती है, जैसे आपने सुना होगा और नहीं सुना होगा तभी सुनने वाले। निषेक रचना होती है ना, जो कर्म जो है अनंत कर्म परमाणु जीव के सभी प्रदेशों में पूरे सर्वत्र फैले हुए रहते हैं, परंतु हमें समझने के लिए जिन जिन परमाणुओं की स्थिति समान होगी उनको इकट्ठा इमेजिन करके हम एक लाइन में बताएंगे तो उसको हम एक निषेक कहेंगे। उससे एक समय अधिक स्थिति वाले परमाणु को हम दूसरे लाइन में बताएंगे, उसको दूसरा निषेक कहेंगे। तो निषेक का क्या अर्थ है? समान स्थिति वाले परमाणुओं का समूह। यहाँ क्या लिखा है? समान स्थिति के धारक परमाणुओं का समूह, इसको निषेक कहेंगे। जब एक ही समय प्रबंध में एक समय में बदलने वाले परमाणु की चर्चा करेंगे तो हम कहेंगे कि एक समय में कितना स्थिति बंद हुआ, कल हमने देखा था ज्ञानावरण में 30 कोणाकोणी सागर का किसी का स्थिति बंद हुआ, तो उसमें निषेक कितने बनेंगे। तो उसमें एक बात आती है कि आबाधाकार, ये आबाधाकार किसको कहना, तो बंध के समय से, एक समय में कितना लॉर्ड बंधा, एक समय प्रबंध। अब उसकी पोजीशन क्या है उस कर्मों की, तो उस समय बंधने वाले जो कर्म है उसमें जो निषेक रचना हम बताएंगे, एक एक समय में एक एक लॉर्ड बताएंगे, तो कहां से वो लॉर्ड शुरू होगा, आबाधाकार छोड़कर उसके ऊपर। आबाधाकार का अर्थ होता है उस समय में बंधे हुए जो निषेक बने हैं, वो कोई भी निषेक इतने काल तक उदय में आने वाला नहीं है। उदय की अपेक्षा आबाधा कह रहे हैं, बाद में हम आगे जाकर उदीरणा की अपेक्षा आबाधा कहेंगे, वो बात अलग है। अभी तो बंध के समय क्या पोजिशन है उसकी चर्चा चल रही है, बंधने के बाद वो कर्मों में स्थित्यंतर होते उसकी चर्चा अभी नहीं करना। तो आबाधा काल किसको कहेंगे, जो हम निषेक रचना बताएंगे। निषेक रचना हम यहाँ आपको फिगर में भी बताएंगे बाद में। तो बंध के समय में कुछ वहाँ निषेक नहीं बनेंगे, उसके ऊपर एक 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 आड़ी लाइन बताएंगे हम, उसको हम निषेक कहेंगे। आबाधा काल को छोड़कर, ये जब ऐसा कहते हैं शासन के आबाधा काल को छोड़कर ऊपर निषेक रचना होती है। तो हमें किसी ऐसे विद्वानों का एक फोन आया था कि उन्होंने क्या समझा था कि आबाधा काल कितनी होती है, 30 कोड़ाकोड़ी सागर की आबाधा कितनी होती है, तो 3000 वर्ष। तो उनका ऐसा उन्होंने मान लिया है, क्योंकि एक शब्द के अर्थ हम कैसे भी उस वाक्य में से निकल सकते हैं कि 3000 वर्ष होने के बाद उनकी निषेक रचना होगी। ऐसा नहीं, निषेक रचना कब होगी, बंद के समय। पहला निषेक कहाँ पड़ेगा, 3000 वर्ष के ऊपर एक समय में। दूसरा निषेक 3000 वर्ष दो समय। तीसरा निषेक 3000 वर्ष तीन समय। अंतिम निषेक 30 कोड़ाकोड़ी सागर। कितने निषेक बनेंगे, 30 कोड़ाकोड़ी सागर में से 3000 वर्ष कम करेंगे, जितने समय बचेंगे, वर्ष नहीं, अभी सागरों में की स्थिति बनती है। तो उसके एक सागर के पल्ले कितने होते हैं, एक सागर में तो 10 कोड़ाकोड़ी पल्ले होते हैं, और एक एक पल्ले के असंख्यात विभाग में असंख्यात करोड़ वर्ष हो जाते हैं। वर्षों की बात छोड़ो, एक समय में कितने, या एक सेकंड में कितने समय होते हैं, हाँ, जगन्नियुक्ता संख्या समय एक आवली में होते हैं। जगन्नियुक्ता संख्या समझते, जो मिनिमम असंख्यात है उसका नाम है जगन्य परिता संख्या। जगन्य परिता संख्यात को जगन्य परिता संख्यात बाहर लिखो, आपस में गुणा करो, आपकी भाषा में जगन्य परिता संख्यात रेस टू जगन्य परिता संख्या, जो संख्या आएगी वो है जगन्य परि जगन्य युक्ता संख्या, जिसका नाम है एक आवली। जो आपके घड़ी में एक सेकंड है उसके, उसमें कितने आवली होती है, हजारों कोड़ा कोड़ी आवली एक सेकंड में होती है। समय की सूक्ष्मता इतनी है। तो हमें तो सर्वज्ञत्व पर भरोसा है ही नहीं, विश्वास नहीं है। हमारे साइंटिस्ट ने प्रूव किया तो हम विश्वास रखेंगे। तो मेरी भाषा में साइंटिस्ट की परिभाषा क्या है, आपने सुनी कि नहीं कभी? हाँ, जिसकी खोज कभी पूरी नहीं होती है, क्योंकि वो ढूंढ रहे हैं ना। और सर्वज्ञ के लिए क्या ढूंढना बाकी रह गया, उन्होंने सब कुछ जान लिया। अभी तो साइंटिस्ट में भी सेकंड के कुछ हिस्से कर दिए, कौन सा वो नैनो सेकंड, उसके आगे बढ़े क्या, बढ़ गया, अच्छा, 26 जीरो, यानी वो रेस टू माइनस 26 कर दो माइनस, वो संख्या है क्या, असंख्या है। यानी अभी तो कोड़ा कोड़ी तक भी नहीं वैसे पहुंचेंगे, तो हमने तो हजारों और कोड़ा कोड़ी ऐसा हमने तो आवलियों का लगाया, और एक एक आवली में असंख्यात होते। समय, समय इतना सूक्ष्म है, ये कहना चाहती है, ख्याल में आई ना बात। तो ये कितने निशय बने, हमारा विषय क्या चल रहा था, निशय कितने बनेगी, एक समय में इतने परमाणु बंधे हैं, तो उसमें एक एक समय में एक एक लॉट और एक एक निशय में भी अनंत परमाणु होते हैं, दो चार नहीं होते, ऐसे कितने बने निशय, असंख्यात बने, एक एक समय पर एक एक निशय, अबाधकाल में निशय रचना नहीं है, उस समय वाले बंधे हुए की निशय रचना की, जब अभी वर्तमान समय में बंधे हुए की जो निशय रचना हम अबाधकाल के ऊपर दिखा रहे हैं, उस समय जो पूर्व में बंधे हुए सत्ता में पड़े हुए उदय में आ रहे हैं ना, उस काल में उनके निशय पड़े हैं, बंध के समय वाले समय प्रबद्ध के निशय की बात अलग है और सत्ता के निशय की बात अलग है, बंधने के बाद वो सत्ता में मिल जाते हैं निशय, परंतु उस समय में बंधा हुआ निशय इतने ऊपर पड़ा है, 3000 वर्ष के ऊपर पड़ा, हम ज्ञान आवरण की बात कर रहे हैं,
टेक्निकली उधर ज्ञात रहेगा,
बंधे हुए उसमें ज्ञात है, पर उस समय सत्ता में से ज्ञात नहीं है, समझ में आया ना, उस समय उदय तो चल ही रहा है,
कभी भी ज्ञात नहीं पड़ेगा, लेकिन
हाँ
बंधने के समय,
बंध के समय पोजीशन क्या है, उस समय बंधने वाले एक समय प्रबंध की पोजीशन क्या है, तो उसमें आबादा छोड़कर इतनी निषेक रचना होती है, निषेक रचना तो हमें आप समझने के लिए पेपर में आता ना, हमारे रुपए का भाव नीचे डाउन हो गया तो हमारे रुपए भी तिजोरी में से नीचे गिरते हैं, बराबर है ना, ये तो हम ग्राफ दिखाते हैं, ऐसे ही यहाँ तो ग्राफ बताना चाहते हैं, ये हमारे समझ में आवे कि कर्मों की कितनी स्थिति है, वो समझाने के लिए ऐसा ड्राइंग बनाते, नहीं तो आप समझेंगे कि अभी हमारे कुछ निशेक इधर है और कुछ निशेक नीचे पैर के तरफ और पैर की तरफ से नीचे जाते हुए ऐसे हो गए, क्योंकि हमें ऐसे कोई मिलते हैं, अभी क्या कहें,
जब 30 घोड़ा पूरी सागर के 3000 वर्ष की आपदा काल पड़ेगी तो जो निषेक रचना होगी वो 3000 वर्ष माइनस करके होगी के पूरी होगी,
30 घोड़ा पूरी सागर में 3000 वर्ष माइनस करें
और इतनी ही निषेक रचना होगी
और फिर वहां से पहला दूसरा तीसरा निषेक बनेगा और वो फिर सत्ता वाले निषेक को मिलेगा, हम उसको जुदा दिखाने के लिए हम उसको कह रहे कि ये ऐसा बना, एक समय में बंधने हुए की क्या पोजीशन है, एक समय में बंधे वाले इतने जो अनंत परमाणु है जो इतने असंख्यात निशेकों में बढ़ गए हैं, वो कभी भी एक साथ उदय में आने वाले नहीं है, पहले नंबर का निशेक और दूसरे नंबर का निशेक एक साथ नहीं उदय में आने वाले, कितने निशेक बने अलग अलग, एक एक समय में एक एक निशेक, वो जुदे जुदे समयों में जाकर उदय में आएंगे, ये ख्याल में आती है ना बात, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है एक समय में बंधे हुए कर्म अलग अलग अनेक समयों में उदय में आते हैं और अनेक जुदे जुदे समयों में बंधे हुए कर्म एक साथ उदय में आते हैं, क्योंकि वो जिसकी जिसकी आबादा पूरी हुई है और किसी का पहला निषेक उदय में आए, किसी का दूसरा है, किसी का तीसरा निषेक उदय में आ रहा है, ऐसे करके उदय जो कुछ निषेक उनकी जो टोटल होगी वो भी करीबन एक समय प्रबद्ध होगी, परंतु वो एक समय में बंधे हुए एक साथ स्थिर नहीं रहे, अनेक अनेक जुदे जुदे समयों में बंधे हुए एक साथ खिल रहे हैं और उसके क्या कॉम्बिनेशन होने वाला है मालूम नहीं हमें कभी तीव्र बांधे, कभी मंद बांधे, कभी कैसे बांधे और ऐसा भी नहीं कि उसका तीव्र उदय आया इसलिए हमको ऐसा करना पड़ा, इसी पराधीनता जीव को नहीं है, जीव बिल्कुल स्वतंत्र है कैसा भी उदय क्यों ना आए, ये उदय आई है तो पतन है, जीव के परिणाम तो जीव के अपने से हो रहे हैं, उसमें हीन अधिक सभी परमाणु पड़े हुए हैं, जीव जैसे भाव करेंगे वैसा उदय है ऐसा हम कहेंगे, निमित्त की तरफ से कार्य का अनुमान किया जाता है, वो निमित्त हमको कंट्रोल नहीं कर रहा है, कर्म का उदय जीव को कंट्रोल नहीं कर रहा है, कर्म का उदय जीव के भावों को बता रहा है, ज्ञापक है उसका, उसका कंट्रोलर नहीं है, जैसे हमारी टेम्परेचर कितना है तो आप वो देखते हैं ना, वो थर्मामीटर तो बॉडी टेम्परेचर, बाकी भी वो आता है ना बैरोमीटर, तो वो कंट्रोल करता है बाहर का टेम्परेचर, क्या करता है खाली दिखाता है, कर्म भी आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो दिखा रहा है कि आपके परिणाम क्या है, फिर भी आरोप कैसे कर्म का ऐसा उदय आया और जीव ऊपर की गुणस्थान से सम्यक से नीचे गिर गया क्योंकि मिथ्यात्व का उदय आया, पर जीव ने मिथ्यात्व तो परिणाम किया तो वहां सामने मिथ्यात्व तो का उदय भी आएगा, एक साथ दोनों हो जाएगी। कर्म में तो कथन ऐसा ही होगा कि कर्म के उदय में ऐसा हुआ, या जीव ने कर्म को उपशमित किया, जीव ने कर्म का क्षय कर दिया। कथन तो दो द्रव्यों का मिलकर आता है, समझना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम तो द्रव्य में होकर जानकार है ना।
तो ऐसा समझे कि जीव का परिणाम हुआ वो उदय, और कर्म का जो अकर्मत्व रूप होने को अवधि।
ना ना ना, कर्मों में औदय, उसका कर्म रूप परिणाम ना उसका औदयिक भाव है, उसकी चर्चा नहीं यहाँ करेंगे। पुद्गल में भी औदयिक भाव होता है, उसकी चर्चा अभी नहीं चल रही। अभी हम क्या कर रहे हैं, कर्म का उदय है और जीव के भाव, देखो देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, किसको कहेंगे। कार्य होता है एक, कारण होते हैं दो, एक उपादान एक निमित्त। अभी घड़ा बना, हमारा जो फेवरेट उदाहरण है ना, घड़ा बना, तो घड़ा बना उसका उपादान कौन है, मिट्टी, और उसका निमित्त कौन है, कुमार। अभी वो घड़ा बनाने वाला कुमार वगैरह सब लगा लो, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी अपना निमित्त निमित्त का वो प्रकरण नहीं है, उसके विस्तार में अभी नहीं जाने, हम स्थूल रूप से उसकी चर्चा करें। तो कार्य बना एक, कारण हुए दो, उसी एक कार्य को हम दो नाम देंगे। क्या कहा, एक कार्य को दो नाम देंगे, उपादान की तरफ से उसी कार्य को उपादेय कहेंगे, निमित्त की तरफ से उसी कार्य को नैमित्तिक कहेंगे। वो कार्य किसने किया, उपादान ने, पर हमने वो निमित्त की तरफ से नाम दिया। अभी यहां हम देखते हैं जीव के भाव की बात है। जीव ने यहां मिथ्यात्व तो परिणाम किया, जीव का ये अपना स्वयं का भले वो उपादान है, अशुद्ध उपादान, परंतु वो जीव का परिणाम है। जीव मिथ्यात्व रूप परिणाम, कर्म में कौन सी अवस्था हुई मिथ्यात्व कर्म की, उदय रूप अवस्था। तो उस जीव के भाव को कैसा भाव कहा, औदयिक भाव। जीव के जिन भावों के समय कर्मों की क्षय रूप अवस्था है उसको कहेंगे जीव का वो क्षय भाव। वो कर्मों के क्षय ने उत्पन्न किया, जीव ने स्वयं उत्पन्न किया है। जीव का भी ज्ञान चल रहा है, क्षोभम ज्ञान, उसका क्षोभम भाव चल रहा है। कर्मों के में क्या अवस्था हो रही, वो ज्ञानावरण का क्षोभम हो रहा है, मतिशुद्ध ज्ञानावरण का भी क्षोभम चल रहा है। तो जीव के उस भाव को नाम क्या दे रहे हैं, हम क्षोभमिक भाव। कर्मों ने नहीं उत्पन्न कराया, कर्मों का क्षोभम हुआ इसलिए यहाँ ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है, ये ज्ञान हमारे स्वभाव में से उत्पन्न हुआ है, वो अपना भाव, नाम हमने निमित्त की तरफ से दिया है, इसलिए उसको ये जो है ना उदय है, क्षयोपशमिक है, क्षायिक है, उपशमिक, ये सब भाव जो है उदय वगैरह, इनके नाम कर्म की तरफ से लिए है, वो जीव के अपने भाव। समझ में आती ना, तो पारिणामिक भाव में कर्म की कोई वहां बात ही नहीं, वो जीव का स्वभाव भाव है, इसलिए उसको पारिणामिक भाव कहते हैं। तो ये कर्मों की तरफ से नाम दे जाते हैं, तो जीव के अपने भाव, जबकि अपने स्वयं के उपादान से उत्पन्न होने वाले वो भाव। तभी ये विषय क्यों निकला यहाँ पर कहाँ से निकला, आवादा काल वगैरह की बात चल रही ना, यानी जीव ने जो यहाँ कर्म इन्हें पहले लागा दिया होता है कि क्या होता है, उसकी अपनी बात पूछी थी ना, उसके लिए मैंने बताया ये। अभी है ना यहाँ जो स्थिति की बात अभी हम उठाएंगे, निश्चय जो रचना होती है वो कितनी, यानी जिसने जीव ने कर्म स्थिति बांधी, कितनी बांधी कर्म स्थिति, हमने कहेंगे 30 कोड़ा कोड़ी सागर का ज्ञानावरण का बंध किया। तो ये 30 कोड़ा कोड़ी सागर किसकी स्थिति है, जो अंतिम निषेक में पड़े हुए परमाणुओं की, नहीं सर, एक समय में अनंत परमाणु बंधे, कोई परमाणु 3000 वर्ष प्लस एक समय पर पड़े, कोई परमाणु 3000 वर्ष दो समय पर, 3000 वर्ष तीन समय पर, कोई हो सकता है कि कोड़ा कोड़ी एक कोड़ा कोड़ी सागर के ऊपर, कोई 20 कोड़ा कोड़ी सागर के ऊपर, कोई 30 कोड़ा कोड़ी सागर के ऊपर। तो जीव ने कितना कर्म स्थिति बांधी कहेंगे, तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर हम कहेंगे उस समय बांधी। ये तो नक्की हुआ ना, क्या प्रत्येक परमाणु में इतनी स्थिति बांधी उसने, नहीं। एक परिणाम किया जीव ने, एक समय तो एक ही परिणाम किया, और अनंत परमाणु में इतने असंख्यात वेरिएशन हो गए स्थिति के। अगर निमित्त से कार्य होना होता तो सब परमाणु में एक सी स्थिति बननी चाहिए थी, तो परमाणु की अपनी योग्यता है ना, कितनी स्थिति उसमें पड़ी। एक समय में ऐसे जो बनने वाले उसमें अनुभाग में भी इतने वेरिएशन हो गए जो हम अनंत वेरिएशन बाद में देखेंगे। तो यदि निमित्त से होना होता तो सब में एक समान होना चाहिए, सब में एक समान स्थिति और सब में एक समान अनुभाग बनना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। हाँ, परंतु कितनी स्थिति बांधी, जो अंतिम निषय की स्थिति है उसकी स्थिति बांधी इतना हम करेंगे, ये कहना चाहते। पर उसमें प्रत्येक परमाणु की जुदी जुदी है, उसको हम निषेक रचना रूप से बताते हैं। तो जितनी 30 कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति बंधी उसमें 3000 वर्ष तक कोई निषेक रचना नहीं है, उसके ऊपर क्रम से एक एक निषेक आराम दिखाएंगे। तो स्थिति कितनी है, अब ये जो यहाँ लिखा है इक्वेशन, ये 7 कर्मों के लिए है। कर्मों की स्थिति कितनी कहेंगे, आवाधाकार प्लस उदयकार, उदयकार यानी जितना निषेक बने हैं उतना उसका उदयकार कहेंगे। यानी एक समय में जो ज्ञानावरण बंधा था, 30 कोड़ाकोड़ी सागर का किसी ने बंद किया था, उसका उदयकाल उस पर्टिकुलर परमाणुओं का कब से शुरू होगा, 3000 वर्ष के बाद एक समय में, और उदयकाल कब तक चलेगा, 30 कोड़ाकोड़ी सागर तक। अभी तो बंधने के समय क्या पोजीशन है उसकी बहुत चर्चा चल रही है, उनमें वेरिएशन होते हैं क्या होता है उसकी चर्चा अभी नहीं है। स्थिति के अनुसार ने स्थिति कितनी बंदी है, 30 कोड़ाकोड़ी सागर, पर वो उदय कब शुरू होगा, 3000 वर्ष के बाद। तो उदय काल कितना कहेगा, 30 कोड़ाकोड़ी सागर माइनस 3000 वर्ष, और आबाधा कब कितना है, 3000 वर्ष, 3000 वर्ष की आबाधा, और यहाँ क्या है, 30 कोड़ाकोड़ी सागर माइनस 3000 वर्ष। आयु कर्म को नहीं, मैंने बोला ना 7 कर्म में लागू होगा। जैसे आयु की स्थिति कितनी बांधी, कल हमने देखी थी 33 सागर आयु की स्थिति बांधी, तो क्या उसका उदय काल कितना होगा, आयु का जितनी स्थिति बंधी है उतना उदय काल। यानी आयु की जब 33 सागर की स्थिति बनती है तो उसके 33 सागर के जितने समय है उतने निषेक बनते हैं, परंतु उसमें आबादा काल नहीं होता क्या, होता है ना, जिस समय से आयु बंधी है उस समय से लेकर उस भव की जितनी स्थिति बाकी है, धर्म जब तक आना नहीं तब तक उसका आबादा काल वही है। जैसे 90 साल के आदमी ने 60 साल के बाद आयु बंधी एक अंतर में, उसके आयु के अभी 30 साल बाकी है, तो उसकी आबादा कितनी होगी, 30 वर्ष उसकी आबादा है। और मान लेते ना उसकी आगे की और 100 वर्ष की आयु बांधी है, तो उसके निषेक कितने बनेंगे, जितने 100 वर्ष के समय है उतने निषेक बनेंगे, उतना ही उसका उदय काल कहलाएगा। और उसका आबादा काल कितना कहेंगे हम, 30 वर्ष, क्योंकि आयु बनने के बाद अभी उसके 30 वर्ष बाकी है।
ऐसा भी आप लोग नाना समय पर से एक साथ आते हैं, प्रति पक्षी कर्मों का उदय भी एक साथ हो सकता है, सातों और सातों एक ही समय में उदय में आता
है। आपका ऐसा प्रश्न है कि जो नाना समय में बंधे हुए एक साथ उदय में आते हैं, तो आपका ये कहना है कि अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में बंध भी बदलता है, कभी साता का बंध हुआ कभी असाता का बंध हुआ, तो अभी उदय में भी ऐसा ही होगा ना कि एक साता का निषेक है और असाता का एक साथ उदय में आता है कि नहीं आता है, तो कहीं नहीं आता है। जब साता का उदय चल रहा है अंतर्मूर्त तक तो उसी का उदय चलेगा, तो असाता का भी आ गए है ना उदय उदय सन्मुख, उसका क्या होगा, उसका उदय होगा तो उस एक समय में टर्न होकर उदय में आएगा, समझ में आते। जब असाता का उदय तब असाता के उदय चलेगा, परंतु असाता के उदय में साता का बंद हो सकता है असाता का बंद हो नहीं सकता। अभी जब ये हमने क्या कहा, मिथ्यात्व के उदय में मिथ्यात्व का बंद हो रहा है, क्या ऐसा साता का उदय में साता का ही बंद हो रहा है, ऐसे कोई जरूरी है, उदय साता का हो बंद कोई भी दोनों पलट पलट का होगा, ऐसे ही दोनों तरफ से ले लेना। असाता का उदय है तो बंद कौन सा होगा, कोई भी हो सकता है। हमको धर्म करना है तो साता का उदय में होगी क्या, असाता के उदय में, अरे उदय का लक्ष्य छोड़ दो तो हो जाएगा। हमने कर्म के उदय रूप अपने को समझ रहा है, कर्म का जो फल मिल रहा है ना, हमने अपने आप को उस रूप समझ के रखा है। ये भेद ज्ञान नहीं करे ना, क्या करे, ये कर्म को क्यों जानना, क्योंकि जो कर्म को जानेंगे तो कहेंगे ये सारा जो है कर्म के उदय का फल है, इसमें हमारा कुछ नहीं है, ये कर्म तो अपनी परंपरा चालू रखना चाहेगा कि नहीं, तो कर्म के उदय में वो अपने पुद्गलों को बुला रहे हैं, और हम ऐसे सियाने हैं कि वो उद्गत को मैं हूँ ऐसा मान रहे हैं। मैं किसमें स्थापित करना, इसी में भूल हो रही है। ये सभी चर्चा इसी की है ना। अभी तो पुद्गल को मैं मानकर रखे ये शरीर को, आगे की बात तो गुरुदेव ने कितनी समय समझा दी। दृष्टि है ना, मैं दृष्टि का विषय का अर्थ होता है मैं, वो मैं किसमें स्थापित करना इसी के बारे में भूल चल रही है। अभी तो शरीर को ही मैं मान के रखा है, यहाँ माँ बाप ने जो नाम रखा इस शरीर का, वो मैं उसमें कितनी आत्मबुद्धि है। अब सोए हुए हो और उस नाम को छोड़कर अन्य नाम से आपको कोई बुलावे, नहीं उठेगी। तो उसके लिए कितना ध्यान करते हो, अपना नाम रखने जो रखा है वो मैं हूँ मानने के लिए क्या ध्यान करते हो? नहीं करना पड़ता है, अपने आप होता है, क्योंकि उसमें इतनी दृढ़ता बनी है, क्योंकि वो मैं हूँ ये नक्की कर दिया है। अब जो सचमुच मैं हूँ वो नक्की करेंगे तो मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं वैसा हूँ, और कहते कि कैसा ध्यान करना। आम का सीजन है और अच्छा देख कर बराबर आप उसका आम लाया है, कैसा है? पीला है, सुगंध आ रहा है। कैसा है? मीठा मीठा रस है उसका। तो हम टेबल पर रखते हैं और फिर ऐसा कहते हैं ये आम बहुत मीठा है इसका ऐसा। क्या करते हैं? और यहाँ तो हम मैं ऐसा हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं राग से रहित हूँ, मैं शरीर से रहित हूँ। अब हमको लोग पूछते कैसा विकल्प करना तो आत्मा का अनुभव हो जाएगा। हमने विकल्प बंद कर दो अभी। तो पूछते विकल्प कैसे बंद करना? ख्याल में आते? चलो अपनी बात चलेंगे। द्रव्यनियोग का विषय निकलता है तो हम ये रुक जाते हैं यहाँ पर। करना तो वही है, अपना अनुभव ही करना है। देखो हम यहाँ स्थिति की बात, ये परिभाषिक शब्द देखे फिर हम स्थिति की ओर बढ़ेंगे। इस कर्म स्थिति की बात ख्याल में है ना, आयु की स्थिति कितनी कहलाएगी? हाँ, जितने निषेक, यानी उसके निषेक रचना कितनी हो गई, जितनी स्थिति बंदी आयु की उतने उसके निषेक बनेंगे। और आबादा वेरिएबल है, अन्य कर्मों में जो आबादा है वो प्रोपोर्शनेट होती है। कैसे प्रोपोर्शनेट? 70 कोड़ा कोड़ी सागर हो तो 7000 वर्ष, 7000 यानी 7700, 70 कोड़ा कोड़ी 7700, 30 कोड़ा कोड़ी 3000, 1 कोड़ा कोड़ी 100, समझ में ना? ये प्रोपोर्शन है। अभी वो अंतर कोड़ा कोड़ी के सभी उसमें अंतर्मुख हो जाते हैं। अभी एक ही युग में एक सागर जितनी स्थिति बनती है, फिर भी उसके लिए अंतर्मुख तो आबादा रहेगी ही रहेगी। अभी क्योंकि अंतर्मुख के बहुत सारे भी है। कुछ पूछा? हाँ, तो ये जो आबादा के आबादा की बात बाद में आ जाएगी और डिटेल में। अभी तो हम स्थिति किसको कहना, आबादा को किसको कहना, उदयकाल किसको कहना, इसके बाद यहाँ देख रहे हैं। तो ये कर्म स्थिति, आबादा, उदयकाल वो अभी हमने देखी। अब निषेक रचना में स्थिति, निषेक रचना में जब बात आती है कि स्थिति कितनी है, तो निषेकों की कुल स्थिति कितनी है, कितने कुल निषेक बने, उसको निषेकों की स्थिति कहने में आती है। यानी वहाँ कितने निषेक बने। हमारे अभी उदाहरण में 30 कोड़ा कोड़ी सागर के जितने समय माइनस 3000 वर्षों के जितने समय, उतने निषेक बने। अभी यही रुकते हैं, अपने पुस्तक पर आना। हम उत्कृष्ट स्थिति बंद कल देख रहे थे आबादा का, तो उतने निषेक बनेंगे। वो निषेकों की स्थिति, स्थिति यानी कर्म स्थिति नहीं, निषेक स्थिति कितनी है? निषेक स्थिति उतनी नहीं बनी, निषेक कितने बने मान लेते हैं। इतनी ये कोड़ा कोड़ी की बात छोड़ दो। हाँ, क्या कुछ कहा हमने? नहीं, मान लेते हैं ना कि कर्म की स्थिति कितनी बांधी, तो 30 समय की बांधी मान लेते हैं, और उसमें आबादा काल कितना था तो 5 समय मान लेते हैं, तो निषेक कितने बने? समझ में आती ना, तो उतनी निषेक स्थिति कहलाएगी। कितने निषेक बनते हैं उसको निषेक स्थिति, जिसको हमने उदय काल कहा था उतने ही निषेक स्थिति। आगे देखते हैं हम पेज नंबर 142 पर थे ना, नहीं 142 पर ही थे। ये अप्रमत्त गुण स्थान में आयु बांधता है उत्कृष्ट, उसकी चर्चा चल रही थी हमारी। 136 की टीका पढ़ रहे थे हमने, 142 पेज पर देखो, फिर से वहां पढ़ते हैं। यानी ये कौन से जो कौन सी स्थिति बांध रहा है उसकी बात यहाँ चल रही है। देखो देवायु की उत्कृष्ट स्थिति, कल हमने ये बात देखी थी, अप्रमत्त विरत गुणस्थान चढ़ने को सम्मुख, ऐसे प्रमत्त विरत गुणस्थान वर्ती जीव बांधता है, उसकी भी हमने चर्चा की थी, क्योंकि वो आभासा सहित स्थिति को यहाँ उत्कृष्ट स्थिति कहने में आते हैं। उत्कृष्ट यद्यपि अप्रमत्त गुणस्थान में भी देवायु का बंध है, जैसे जिसने छठे गुणस्थान में 33 सागर का बंध शुरू किया है, सातवें में जाकर उसका बंध कुछ कम नहीं होने वाला, वो 33 सागर का पूरे अंतर्मुहूर्त तक उतने ही निषेक संबंधी उसकी आयु 33 सागर की ही बंध है, उसमें कभी एक समय में 33 सागर दूसरे समय में 30 सागर ऐसा नहीं होता है, पूरे वो 33 सागर का ही बंध कर रहा है। फिर भी यहाँ छठे गुणस्थान वर्ती को ज्यादा क्यों कहा, पहले समय में जो शुरू होता है वहां वो उत्कृष्ट आभाला समझ में आएगी। और ये भी ऐसा जीव लिया, 1 करोड़ पूर्व की आयु वाला जीव, 1/3 पूर्व कोटि बांकू है, 1 करोड़ पूर्व कोटि, तो उसमें उसने आयु का बंध शुरू किया, उस ये जीव वो लिया है। तथापि अप्रमत्त में तो विशुद्ध तीव्र विशुद्ध परिणाम पाए जाते हैं, इस कारण वहां तो देवायु का बंध ही नहीं है। देवायु का बंध तो सातवें के निरतिशय भाग में ही होता है, ऊपर नहीं होता, निरतिशय अप्रमत्त में बंध है। तथापि उत्कृष्ट स्थिति बंधन नहीं होता इसलिए वहां नहीं कहा, यह तो उसका रीजनिंग नहीं बताया है, वो मैं अपनी ओर से बता रही हूं। आहार द्वीप की उत्कृष्ट स्थिति प्रमत्त गुणस्थान के सम्मुख हुए अप्रमत्त गुणस्थान वर्ती संकलेश परिणामी जीव बांधता है, क्योंकि जो छठे से सातवें में गया है वो तो शुरुआत में तो उसके विशुद्धि है, फिर कुछ देर के बाद वो फिर छठे के सम्मुख हुआ तो उसके संकलेश हो जाए, उसमें भी अनेक जीवों में विशेषता होगी ना, एक सा एक ही परिणाम नहीं है, उसमें भी वेरिएशन है उन जीवों में से जो संकलेश परिणामी है और जो आहार का बंद कर रहा है, ऐसे जीव को उसकी स्थिति अधिक बंधेगी, क्योंकि तीन आयु बिना शेष कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति उत्कृष्ट संकलेश द्वारा बनती है। ये भी हमने बहुत बार देखा था, जहां संकलेश ज्यादा वहां कर्मों की स्थिति ज्यादा, इसमें तीन आयु का वो अपवाद है, बाकी कर्म प्रशस्त हो या अप्रशस्त हो, जहां संकलेश ज्यादा वहां वो स्थिति ज्यादा। स्थिति में तो बहुत आसान है समझना, चूंकि आहार द्वीप का बंद करने वाले जीवों में जो प्रमत्त विरत के सम्मुख हुआ ऐसा अप्रमत्त विरत के ही उत्कृष्ट संकलेश है, इसलिए उसी के उत्कृष्ट स्थिति सहित आहार द्वीप का बंध कहा। तो आहार द्वीप नाम कर्म का भेद है ना, तो इसका आहार द्वीप का उत्कृष्ट बंध कितना होता होगा, अंत कोड़ा कोड़ी सागर, भले नाम कर्म का है पर समय दृष्टि कितना बांधता है स्थिति, अंत कोड़ा कोड़ी सागर। नाम कर्म की 20 कोड़ा कोड़ी होती है, परंतु नाम कर्म की सभी में 20 कोड़ा कोड़ी नहीं है, समय दृष्टि जो बंद करेगा भले चौथे गुणस्थान से लेकर श्रेणी के शुरुआत में भी अंत कोड़ा कोड़ी सागर का ही बंध है, बाद में ऊपर के गुणस्थानों में वो बंध कम होता चला जाता है। यहाँ नहीं, उत्कृष्ट स्थिति सहित तीर्थंकर प्रकृति को नरक गति जाने के सम्मुख हुए असंयत समय दृष्टि मनुष्य बांधता है। यहाँ तो इतनी बात लिखी है, परंतु इसमें भी जिसे श्रेणी के राजा भी नरक के सम्मुख हुए थे असंयत समय दृष्टि से, उन्होंने इतनी उत्कृष्ट स्थिति नहीं बांधी, परंतु जो चौथे से मिथ्यात्व में जाकर फिर दूसरे या तीसरे नरक में उत्पन्न होने वाले हैं ऐसे जीव ही उत्कृष्ट स्थिति बांधेंगे, क्योंकि चौथे वाला मिथ्यात्व के सम्मुख है तब उसका उत्कृष्ट संकलेश होगा, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाले जीवों में उसके तीव्र संकलेश पाए जाते हैं। अवशेष 116 प्रकृतियों को उत्कृष्ट स्थिति सहित मिथ्या दृष्टि जीव ही बांधता है, उसकी बात अभी आगे बताएंगे, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव है, बाकी जो प्रशस्त कर्म या अप्रशस्त जो मिथ्या दृष्टि बांध सकता है उसके तीव्र संकलेश में उसका उत्कृष्ट स्थिति बंध होगा। अब ये जो तीन शुभ आयु है उसको अन्य अशुभ के साथ भी ले लिया है, नरकायु मनुष्यायु तीर्यंचायु, ये तीन आयु, नरगति नरगत्यानुपूर्वी, देवगति देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रीक वैक्रीक अंगोपांग, ये सबको मिलकर वैक्रीक शतक कहते हैं। द्विन्द्रिय तीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय विकलत्रय तथा सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण या सूक्ष्मत्रय, इन 15 प्रकृतियों को ये विकलेन्द्रिय जीवों की नहीं बांध बता रहे हैं, द्विन्द्रिय जाति तीन्द्रिय जाति बांधने वाली बात है, उस प्रकृतियों की बात है। इन 15 प्रकृतियों को उत्कृष्ट स्थिति सहित कौन बांधता है? मनुष्य और तीर्यंच मिथ्या दृष्टि बांधता है, क्योंकि ये प्रकृतियां देव और नारकियों के नहीं बनती है, इसलिए मनुष्य तीर्यंच मिथ्या दृष्टि लिया। ये प्रकृतियां देव नारकियों को बनती नहीं है, देव और नारके ना देवगति बांधेगे ना नरगति बांधेंगे, ना द्विंद्रियादि को बांधेंगे, ना सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त को बांधेंगे, इसलिए उसको ले लिया। अब औदारिक शरीर औदारिक अंगों का तीर्यंच गति तीर्यंच गत्यानुभूति उद्योग असंप्राप्त सुपाटिका सहन है, इनको उत्कृष्ट स्थिति सहित मिथ्या दृष्टि देव और नारक जीव बांधता है। ऐसा क्यों कहा कि ये प्रकृतियां देव मनुष्य और तीर्यंच नहीं बांध सकते? बांध सकते हैं, तो वो क्यों नहीं उसका उत्कृष्ट स्थिति बंद करते हैं? मनुष्य तीर्यंच को क्यों नहीं लिया, देव नारकी को क्यों लिया? यहाँ देव नारकी को क्यों लिया? अच्छा प्रश्न क्या है? हमने ये वाक्य पढ़ा, देखो कौन कौन सी प्रकृति ली, औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग, तीर्यंच गति तीर्यंच गत्यानुभूति, उद्योग और ये 6 नंबर का सहन, इनकी उत्कृष्ट स्थिति बांधने वाला कौन है? तो देव और नारकी। क्यों मनुष्य तीरंज को क्यों नहीं लिया? अरे चौथे गुणस्थान वाले नहीं, मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है। देखो मैं बताती हूँ, देव और नारकी तीव्र संकलेश में तीरंज गति बंधेगी बांधेगी तो नक्की है ना, और तीरंज गति बांधेगी तो औदारिक औदारिक अंगोपांग का वही करेंगी। अब मनुष्य और तीर्यंच उत्कृष्ट संकलेश में कौन सी गति बांधी? इसलिए यहाँ मनुष्य तीर्यंच को नहीं लिया, मनुष्य तीर्यंच भी इनका बंध तो कर सकते हैं, अति उत्कृष्ट संकलेश में वो नरक गति का वैक्रिक शरीर अंगोपांग का बंध करेंगे, थोड़ी सी संकलेश कम है तो तीर्यंच गति ये बांधेगी, ये प्रकृति उनको नहीं बांधती ऐसी नहीं है, पर नरक गति के साथ कोई सहन नहीं बनता है, समझे? नरक गति के साथ सहन नहीं बनता, जहाँ 20 कोड़ा कोड़ी सागर के बंध योग्य संकलेश है वहां नरक गति वैकृत शरीर बांध रहे, उस समय कोई सहन नहीं बन रहा। अब जहाँ थोड़ी संकलेश कम है तब वो तीर्यंच गति और औदारिक शरीर का बंध कर रहे हैं, तो वहां उसका वो उतने महीने में कम होगा उनके लिए, उसका बंध 20 कोड़ा कोड़ी का नहीं होगा, उनके लिए वो 18 कोड़ा कोड़ी का होगा। समझ में आती है बात? थोड़ा सूक्ष्म पॉइंट है, जितना पकड़ में आता है उतना पकड़ो। यहाँ देवनाथ स्वामित्व तो बताया कौन करता है, ऐसा क्यों? ऐसा प्रश्न हमें भी उठना चाहिए ना। आगे देखो, एकेंद्रीय आतप और स्थावर, इन तीनों को उत्कृष्ट स्थिति सहित मिथ्या दृष्टि देव बांधता है। अभी क्यों? ये तो हम आप क्यों नहीं बांध सकते? क्योंकि उत्कृष्ट देखो भवनत्री और सौधर्मेशा, उनके लिए ऑप्शन दो है, तीर्यंच गति बांधेंगे या मनुष्य गति बांधेंगे। तीर्यंच गति में भी ऑप्शन दो है उनके लिए, एकेंद्रीय जाति बांधेंगे या पंचेंद्रीय जाति बांधेंगे, तो अति तीव्र संकलेश में वो क्या बांधेंगे? एकेंद्रीय जाति। और मनुष्य अति संकलेश में क्या बांधेगा? इसलिए इनका उत्कृष्ट बंद करने वाला है वो देव लिया मिथ्या दृष्टि देव अति संकलेश, वो अति संकलेश वाली कंडीशन लगा लेना। अवशेष रही 92 प्रकृतियों को, अभी एक ही आतप स्थावर को देव में लिया, परंतु सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त को तो देव नहीं बांधते, वो बांधने वाले कौन है? मनुष्य तिर्यंच है, वो भी अति उत्कृष्ट संकलेश में तो नरक गति बांध रहे, थोड़ा संकलेश कम है तो सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण को बांधेंगे, ये उसका अर्थ है। परंतु इनका उत्कृष्ट कौन बांधेंगे? तो मनुष्य तिर्यंच बांधेंगे, क्योंकि देवों के नारकियों की यह प्रकृति बनती नहीं है, उनको उत्कृष्ट संकलेशी और ईषत मध्यम संकलेशी चारों गतियों के जीव बांधे। वो सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त उन्होंने ऊपर लिए थे पहले लाइन में, 15 प्रकृतियों को मनुष्य तिरंज बांधता है और बाकी जो रहे हैं ना, यानी वो प्रतिपक्षी वगैरह सब ले लेना, उसमें चारों गति के जीव बांधते हैं। यह उत्कृष्ट ईषत मध्यम संकलेशी जीवों का स्वरूप कहते हैं। ये थोड़ा डिटेल है, देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं। हाँ, ये तो मूल संस्कृत टीका का ही है। यहाँ क्या कहना चाहते हैं देखो, मैं थोड़ी अपनी भाषा में बता दी। स्थिति बंध के जो भेद हो गए, स्थिति बंध जितनी स्थिति बनती है, एक पर्टिकुलर स्थिति बनी मिनिमम, उससे एक समय अधिक स्थिति बनी, उससे एक समय अधिक स्थिति बनी, उससे एक समय अधिक स्थिति बनी, तो ये पर्टिकुलर स्थिति बंध कितने अलग अलग परिणामों के द्वारा बनती है, उन परिणामों को कहते हैं स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान। उतनी ही पर्टिकुलर स्थिति जुदे जुदे स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान को या उसको कषाय अध्यवसाय स्थान को, उसके कारण वो उतनी पर्टिकुलर स्थिति बन सकती है। तो वो कारणभूत परिणाम कितने जुदे जुदे होते हैं, तो असंख्यात लोक प्रमाण जुदे जुदे होते हैं। तो एक ही पर्टिकुलर स्थिति, अभी हम जगने की बात नहीं कर रहे, हम उत्कृष्ट की कर रहे हैं, तो उत्कृष्ट की स्थिति बनने योग्य परिणाम कितने हो गए, तो उसके योग्य असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होगा। तो जो असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है, उसमें से जो उत्कृष्ट वाला है उसके साथ उत्कृष्ट स्थिति बनती है, वो उत्कृष्ट के थोड़े पहले वाले हैं, अनुत्कृष्ट जो परिणाम है उसके द्वारा भी वो स्थिति बनेगी, और उससे भी कम करो, यानी जो लास्ट लॉट है ना असंख्यात लोक प्रमाण जो परिणामों के भेद, जिनके द्वारा उत्कृष्ट स्थिति बन सकती है, यानी वो उत्कृष्ट संकलेश भी हो सकता है, वो उसके योग्य मध्यम भी हो सकता है, और उसके योग्य वो ईषत यानी कम भी हो सकता है, परंतु है सारे वो उत्कृष्ट स्थिति बंध के कारणभूत परिणाम। यानी उत्कृष्ट वो स्थिति है, वो अपने पर कारणभूत जो उसके असंख्यात लोक प्रमाण भेद है उनमें से किसी भी परिणामों के द्वारा उत्कृष्ट स्थिति बन सकती है। अब इसमें तो बहुत डिटेल्स है जो हम भाव परिवर्तन में हमने देखे ना, स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान, उसमें भी बहुत ओवरलैपिंग भी होते हैं परिणाम, कितने ही परिणाम अलग अलग दो तीन स्थितियां भी बांध सकते हैं, पल्ले के असंख्या के भाव प्रमाण अलग अलग भेद एक ही परिणाम से बन सकते हैं, या एक ही स्थिति जुदे जुदे असंख्यात लोक प्रमाण भेदों से भी बन सकती है कषायों से। उसके डिटेल में नहीं जाते हुए ये ईषत मध्यम संकलेश परिणाम उसको कहेंगे। अपने स्थिति के बंध योग परिणामों में से हो सकता है मैक्सिमम वाला उत्कृष्ट संकलेश वाला भी होगा, कुछ कम संकलेश वाला भी होगा, या उससे कम संकलेश वाला भी हो सकता है। अभी है 5 मिनट।
मतलब जैसे आयु बंध के समय में 26
8 मध्यम अंशों में आयु बनती है, और अन्य तो लेशम के तो हरेक के जगन्य मध्यम उत्कृष्ट तीन तीन भेद है, वो साहित्रिक 18 वो उसके भेद हुए और ये 8, ऐसे 26 टोटल अंश बताए, पर अंश बताए 26, परंतु एक एक लेशा में तो असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं, जिसमें असंख्यात लोक बार षट स्थान की वृद्धि के स्थान है। अभी वो इतने डिटेल में अगर हम समझ में जाए, शिविरों में क्या होता है मुख्य स्थूल रूप से बड़ी बड़ी बातें बताएंगे हम आपको, ये डिटेल है उसको डिटेल में जानना आवश्यक है। जब हमने रोज के प्रवचन में इसको लिया था स्वाध्याय में, तो एक एक बात की बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी, वो तो हम जो सीढ़ी बनाते हैं ना उसमें एक एक लाइन को समझाया है, और यहाँ शिविरों में क्या होता है कोई मुख्य विषय को थोड़ा हाईलाइट करके हम बताते हैं। इसके डिटेल्स बहुत है, परंतु भी इतना ही डिटेल लेने तो उसी में 5-6 घंटे चले जाएंगे, इसलिए हम इतना ही यहाँ समझते हैं कि एक एक पर्टिकुलर बंध के कारणभूत परिणाम अलग अलग हो सकते हैं, उसी में उन्होंने ईषत मध्यम और उत्कृष्ट बताया। नहीं वो इसमें नहीं है, वो 26 में इसमें कोई संबंध नहीं है। यह हम उत्कृष्ट स्थिति बंध के कारणभूत परिणामों की बात करें, आयु बंध के कारणभूत परिणाम जुड़े हैं, ये अन्य की बात चल रही है। उत्कृष्ट संकलेश से उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है ये तो नक्की है, परंतु वो संकलेश थोड़ा कम है तो भी वो उत्कृष्ट स्थिति बन सकती है, और थोड़ा कम है तो भी बन सकती है, ये यहाँ कहना चाहते हैं। इसलिए ईषत मध्यम और उत्कृष्ट ऐसा शब्द आया। अभी तो हम यही रुकेंगे, फिर जघन्य स्थिति बंध के भी भेद देखेंगे, और बाद में वो असंगी में उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना है, चतुरिंद्री में कितना है, तिंद्री, उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले हमने अभी उत्कृष्ट देख लिया है मूल प्रकृतियों का और कुछ उत्तर प्रकृतियों का, अब जघन्य भी स्थिति बंध देखिए। मिनिमम पॉसिबल स्थिति बंध किसी के होता है तो कितना होता है, कौन करता है, उसकी चर्चा करेंगे। अब थोड़ी देर के बाद हम मिलेंगे यहाँ पर। बोलो 2400।